नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने नवगठित तीन विभागों के लिए कामों का बंटवारा किया। मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में आयोजित पहली उद्योग वार्ता में 32 निवेशकों ने दिया निवेश का प्रस्ताव। अस्पताल, शिक्षा और गन्ना आधारित उद्योगों में दिखाई रुचि। केंद्र सरकार ने कहा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर बिहार को 11,806 करोड़ रुपए की राशि दी गई। और तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नवगठित तीन विभागों के लिए कामों का निर्धारण कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नवगठित युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के जिम्मे 19 दायित्व सौंपे गए हैं, जिसमें रोजगार और कौशल बढ़ाने के लिए योजनाओं का निर्माण शामिल है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के जिम्मे 17 और सिविल विमानन विभाग के जिम्मे 9 कार्य सौंपे गए हैं। इस संबंध में समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने कहा कि नए विभागों के बीच कार्यों के बंटवारे से विकास कार्य में तेजी आएगी।
कैबिनेट से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है युवा रोजगार विभाग का, और साथ में जो नगर विमानन विभाग है और उच्च शिक्षा, तीन विभाग का पहले से कैबिनेट में स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। अब उनका जो हमारे पदाधिकारी है उनको भी जिम्मेवारी तय कर दी गई है। अब नए सिरे से इसमें काम का शुरुआत होगा और इसका हर क्षेत्र में असर होगा, सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में ही नहीं और बिहार के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उद्योग वार्ता के दौरान पटना में 32 निवेशकों से मुलाकात की और उनकी निवेश योजनाओं पर बातचीत की। इस दौरान भारी वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने का प्रस्ताव दिया है, जबकि कोका कोला कंपनी ने भी प्रदेश में नया प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर की है। बैठक में दूध और डेयरी उत्पाद संबंधी उद्योग, बिहार फिल्म सिटी निवेश, उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लेदर प्रोडक्ट और गन्ना आधारित उद्योगों से जुड़े प्रस्ताव निवेशकों ने रखे हैं। इनमें से अधिकतर प्रस्तावक बिहार के मूल निवासी हैं, जो अन्य प्रदेशों में भी अपना उद्यम संचालित कर रहे हैं। इस दौरान निवेशकों ने आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने और सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने की मांग भी की। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता देगी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि प्रदेश को पिछले 3 साल में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 11,806 करोड़ रूपये की राशि अनुदान के रूप में मिली है। उन्होंने राज्यसभा में भीम सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि इस राशि का उपयोग पेयजल, स्वच्छता, सड़क मरम्मत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक भवनों का निर्माण जैसे कार्यों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पंचायतों की योजनाओं, व्यय, प्रगति और वित्तीय लेनदेन की रियल टाइम निगरानी की जा रही है। पंचायती राज विभाग की योजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा बैठक की आज रोहतास से शुरुआत होगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि वे स्वयं हर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यालय और संबंधित जिलों के अधिकारी भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। श्री पांडेय ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि फिलहाल प्रदेश में 702 अस्पतालों में इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं का विस्तार प्रदेश भर में किया जा रहा है, इसका लाभ महिलाओं को हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली में मुलाकात की और उनसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बकाया 4,491 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने इस राशि को जल्द ही जारी करने का भरोसा दिया है। श्रवण कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और राज्य की सड़क परिवहन से जुड़ी योजनाओं की चर्चा की। इस दौरान श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की सड़क योजनाओं के लिए हर संभव मदद करेगी। नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पटना शहर में 25 जगहों को चिन्हित कर वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। उन्होंने पटना नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि शहर में जल निकासी, जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग कराई जाएगी। इस दौरान श्री नवीन ने सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नालों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़े सूचकों की जानकारी भी ली। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अवैध बालू खनन तंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति या पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान के तहत संवेदनशील स्थलों की पहचान कर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। श्री सिन्हा ने कहा कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की आवाजाही होने पर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गृह विभाग को इस मामले में विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाने और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इधर आर्थिक अपराध इकाई ने बालू और भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। इसका नेतृत्व डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो करेंगे। कार्यबल में एसपी स्तर के एक और डीएसपी स्तर के चार अधिकारियों के साथ 5 पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल किए गए हैं। नवगठित एसटीएफ विभिन्न जिलों में बालू और भूमि के अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल करेगा। साथ ही ऐसे कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सांसदों के लिए विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए देश के विकास, सुशासन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति एकजुट है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन देश के विकास के लिए मिलकर काम करना जारी रखेगा। पटना में देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री के सलाहकार और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रस्तावित ऊर्जा संग्रहालय परियोजना की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ है। बैठक में विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रबंध निदेशक राहुल कुमार मौजूद थे। इस दौरान अधिकारियों ने परियोजना को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। बैठक में ऊर्जा संग्रहालय परियोजना की अवधि, एजेंसी की योग्यता और चयन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। बिहार सरस मेले का आयोजन आज से पटना के गांधी मैदान में होगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला 28 दिसंबर तक चलेगा। मेले में 25 राज्यों की आजीविका समूह से जुड़ी महिलाएं भाग लेंगी। इस मेले में हस्तशिल्प, लोक कला और देसी व्यंजनों को लेकर प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाए गए हैं। तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं अधिकतर स्थानों पर सुबह और शाम के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह के समय अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा होने की संभावना है। 13 दिसंबर 2025 से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है।
इधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान औसतन 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए कूच बिहार ट्रॉफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में बिहार और हरियाणा के बीच मुकाबला ड्रॉ समाप्त हुआ है। हरियाणा ने पहली पारी में 541 रन का विशाल स्कोर बनाया। बिहार की पूरी टीम पहली पारी में 430 रन ही बना पाई, जबकि दूसरी पारी में हरियाणा ने मैच की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बनाए। पहली पारी में बड़ी बढ़त के आधार पर हरियाणा को 3 अंक मिले हैं, जबकि बिहार को केवल 1 अंक से ही संतोष करना पड़ा। नीति आयोग ने कहा है कि विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक पूंजी जुटाने में सक्षम एक मजबूत और विविध वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता है। आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने नई दिल्ली में भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने पर रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में वैश्विक बाजारों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण भी शामिल है। इसमें संरचनात्मक कमियों को उजागर किया गया है और कानूनी, नियामक और बाजार अवसंरचना ढांचे को मजबूत करने के लिए लक्षित सिफारिशें दी गई हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का 4वां संस्करण आयोजित किया। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक के मीना ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए 3 प्रमुख प्राथमिकताओं की चर्चा की। बैठक के दौरान राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की उप सचिव अंकिता चक्रवर्ती ने कहा कि जल अर्पण दिवस सरकार की ओर से एक घोषणा है, जिसका उद्देश्य समुदायों को उनके जल संसाधनों से जोड़ना है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवा दियारा के बिंद टोली में छापेमारी कर पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 3 देसी पिस्तौल, कई अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। सीतामढ़ी जिले का 54वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने हवाई अड्डा मैदान में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों ने विकासात्मक प्रदर्शनी लगाई। पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत चलाए जा रहे अवैध बालू खनन ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इधर अररिया जिले में अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान बालू और मिट्टी के अवैध खनन स्थलों की पहचान कर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। अरवल के गांधी मैदान स्थित खेल भवन में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय विद्यालय बालक योग प्रतियोगिता कल से शुरू हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य के नए 3 विभागों में काम बंटा, सचिव नियुक्त। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, केसरिया स्तूप अमूल्य धरोहर, सुविधाओं का होगा विस्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, पुलिस लाइन में जातियों के आधार पर नहीं चलेंगे मेस, अब सभी एक साथ खाना खाएंगे। प्रभात खबर ने निवेश वार्ता से जुड़ी खबर पर लिखा है, अशोक लीलैंड बिहार में लगाएगी ई बस की फैक्ट्री, नया कोका कोला प्लांट लगेगा। आज अखबार की सुर्खी है, अलकतरा घोटाले में कार्यपालक अभियंता और ट्रांसपोर्टर को सजा। राष्ट्रीय सहारा ने एसआईआर पर लिखा है, 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की तिथियां दोबारा बढ़ाई गयी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने नवगठित 3 विभागों के लिए कामों का बंटवारा किया, मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में आयोजित पहली उद्योग वार्ता में 32 निवेशकों ने दिया निवेश का प्रस्ताव। अस्पताल, शिक्षा और गन्ना आधारित उद्योगों में दिखाई रुचि। केंद्र सरकार ने कहा, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर बिहार को 11,806 करोड़ रुपए की राशि दी गई। और तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।